نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، روحانیت میں جہاں ماڈرن لینگویج یوز ہوتی ہے، وہاں ایک لفظ اکثر و بیشتر آپ کے سننے میں آیا ہوگا، الکیمی. یہ لفظ اتنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس لفظ کو ہم کسی قسم کی بھی انجینئرنگ، کیمسٹری، فزکس، روحانیت، مذہب، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، اس لفظ کو ہم کہیں بھی فٹ کر دیں. اس کے بارے میں بہت سی مسکنسیپٹس بھی ہیں. در حقیقت اوریجنلی یہ لفظ 12ویں صدی عیسوی میں رائج ہوا. اس وقت یہ اسپرچل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا یوں کہیے کہ اس کی صحیح تعریف یہ تھی کہ کسی انسان کی مینٹل کانشیسنیس، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. جو بعد میں آنے والے اسکالرز، انہوں نے جو اسے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، تو یہ پھر دوسرے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا. لیکن اس کی اصل جو ہے وہ اسپرچل ڈیولپمنٹ یا مینٹل کانشیسنیس کے لیے استعمال ہوتا رہا لفظ الکیمی. ایک کرسچن پروفیسر جو صوفی بھی تھے، اس پر بہت سی آئی بروز اٹھیں گی کہ کرسچن صوفی کیسے ہو سکتا ہے. خود رب کا فرمان ہے قرآن میں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب، ان میں بھی اہل علم ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جہاں اور احکامات پر توجہ نہیں دیتے، ہم اس فکرے کو بھی بھول کے یہ سمجھیں کہ صوفیز یا اسپرچولسٹ صرف اسلام ہی میں ہیں. ایسا نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں بھی ہیں. یہ تو وہ کرسچن صوفی، اس نے ایک کتاب لکھی جو 1888 میں شائع ہوئی، اور اس نے بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ الکیمی رائج ہوا جب مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا، اور جب مسلمانوں کا وہ قبضہ ختم ہوا اسپین سے، تو جو کتابیں کرسچنز کے ہاتھ لگیں، اس کو بنیاد بنا کر جو کتابیں لکھی گئیں فردر، اس کے اندر اس لفظ کو پوری طرح سے استعمال کیا. یہ اور بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اور کرسچن پروفیسر نے تحقیق کی، اور اس نے کہا کہ اس اوریجنل آتھر کے برعکس گریک دور میں بھی لفظ الکیمی ملتا تھا، جبکہ پہلے جو اوریجنل آتھر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لیٹن رجیم کا لفظ نہیں ہے، یہ اس کے بعد رائج ہوا ہے اسپین سے. چونکہ اسپرچل ڈیولپمنٹ جب انسان کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کیمسٹری میں بہت سی غیر مرئی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. اس کا جسم وہی صورت رکھتا ہے، خون بھی وہی رنگ اور وہی کیمسٹری رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسی غیر مرئی تبدیلیاں ہوتی ہیں بقول ممتاز مفتی کے، کہ جو اہل علم ہیں ان کی تمام حصے 6 گنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ انسان میں قوت برداشت بہت بڑھ جاتی ہے. بدترین حالات میں وہ بڑے سکون سے کھڑا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس کا جو ذکر آدمی کرتا ہے، एक लंबे अरसे तक उसको पुकारता रहता है, अल्लाह उसके अंदर सुकून भर देता है। दूसरी रहमत रब ताला की ये होती है कि इंसान के दिल से नफे और नुकसान का एहसास निकाल देता है। दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान किसी फकीर को हिला नहीं सकता, उसके माथे पर शिकन भी नहीं पैदा कर पाता। इस जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से इंसानी जहन इतना तेज होता है कि नैनो सेकंड्स में मसाइल के हल उसके सामने आने लगते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह पर भरोसा इतना ज्यादा उसका पुख्ता हो जाता है कि किसी तरह भी वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा रब मुझे अकेला छोड़ देगा। उसको हमेशा ये यकीन रहता है कि रब मेरे साथ है और रब ताला मेरी मदद फरमाएगा। अब ये रब मेरे साथ है से मुझे जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए, जिनके दादा ने उनको बचपन से जब वो बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ना सीख गए तो जो पहली चीज उनके दादा ने उन्हें सिखाई और उनसे बैठ के जिक्र करवाया वो यही चीज थी कि अल्लाह मेरे साथ है। वो अरबी में पढ़ते थे अल्लाह माई। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो 5 साल के हो गए तो दादा ने ये चेक करने के लिए कि इस जिक्र ने इनकी कोई कल्बी तब्दीली भी ले आया है ये जिक्र या नहीं, तो अंदर घर में भेजा के जाके एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, और खुद एक बड़ा सेब, बड़ा खुश रंग लेबनीज सेब वो उठा के रखा, जो रास्ता गुजरता था घर के सामने से वहां। जब ये हजरत जुनैद बगदादी उस वक्त बच्चे थे लेकर आए पानी, तो दादा ने कहा कि वो देखो वो सामने क्या चीज पड़ी है। हजरत जुनैद बगदादी ने देख के कहा कि सेब है। तो फरमाया कि ये किसी का गिर गया है, जाओ उठा लो उसे ले आओ। तो हजरत जुनैद बगदादी गए और जाके सेब के ऊपर इस तरह भी हाथ रखा तो फौरन हाथ वापस खींच लिया, वापस आ गए। तो दादा ने पूछा क्या हुआ, उठाया नहीं तुमने? तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप खुद ही तो मुझे पढ़ने को कहते हैं सुबह शाम कि अल्लाहुम्मा माई, तो जब मेरा रब मेरे साथ है तो क्या ये नहीं देख रहा कि मैं किसी शख्स का गिरा हुआ सेब उसकी बगैर इजाजत उठा रहा हूं? ये कल्बी तब्दीली है जो इंसान में वाकई होती है जिक्र से। ये गैर मरई तब्दीलियां मैं कह रहा था आपसे, इसको रेफर कर रहा था। वो जो हम सोचते हैं कि अल्लाह के जिक्र से जो कुछ हासिल होता है वो सिर्फ आखिरत ही के लिए है, यकीनन आखिरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके साथ ही साथ इस दुनिया में भी उसके हमें फवायद मिलते हैं। जैसे कुछ तब्दीलियां मैंने अर्ज की कि ये तब्दीलियां फकीर में वाकई होती हैं। ये तब्दीलियां हमारी दुनियावी जिंदगी में भी काम आती हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये दुनियावी जिंदगी उखरवी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उखरवी जिंदगी से हमारी। उसकी वजह यह है कि इस दुनियावी जिंदगी में हम उस फसल का बीज बो रहे हैं जो फसल हम आखिरत की जिंदगी में काटेंगे। अगर यहां पर हमने ऐसा फॉल्टी बीज बो दिया जिसकी फसल भी फॉल्टी हुई, उसका फल भी फॉल्टी हुआ, तो हम फिर हमेशा हमेशा अब्दुल अब्दार के लिए इसको भुगतते ही रहेंगे। तो इस जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि ये जिंदगी इस तरह से हम गुजार लें कि इसका फल हम यहां भी खा जाएं और आखिरत की जिंदगी में भी मीठा फल मिल जाए हमें। इस दुनिया पर मुनहसर है, उसका इन्हासार है आखिरत की जिंदगी का। जो कुछ हम यहां बोएंगे वो काटेंगे कल को, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये जो वस्व पैदा हो जाते हैं इंसान में जिक्र के साथ, ये इस दुनिया में कामयाबी की कुंजी है। पिछली नशिस्त में मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि कशफो करामात या मुस्तजाबुद दावात होना कोई कसौटी नहीं किसी शख्स को परखने की कि वो अहले इल्म है या नहीं है। तो मैंने अर्ज किया था कि रब ताला ने कंडेम किया है शिर्क को बड़ी स्ट्रांग वर्ड्स में, सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। लेकिन वो हिंदू जो मंदिर में बैठ के एक बुत के सामने दुआ मांग रहा है, उस बुत से शिर्क कर रहा है, वो दुआ तो मांग रहा है उस बुत से, लेकिन रब उसकी दुआ कबूल करके उसको पूरी कर रहा है। तो अगर बुतों के सामने मांगी गई दुआएं कबूल हो जाती हैं तो फिर दुआ कबूल होना कोई मायार नहीं हो सकता। दुआएं उनकी भी कबूल होती हैं जो रब को मानते ही नहीं, धैर्य हैं। दुआएं उनकी भी कबूल होती हैं जो अल्लाह से सरकशी करते हैं। गुनाहगारों की दुआएं भी कबूल होती हैं। तो दुआ का कबूल होना तो कोई मायार हो नहीं सकता किसी शख्स के अहले इल्म होने। इसी तरह कशफ करामात की अगर बात है तो जानवरों तक को, कुत्ते और बिल्लियों को आने वाली आफात का वक्त से पहले पता चल जाता है, तो फिर उन्हें अहले इल्म क्यों न मान लिया जाए। ये सब चीजें कोई मायार नहीं किसी शख्स के अहले इल्म करार पाने की। लेकिन अजीब इत्तफाक ये हुआ कि उसी नशिस्त में किसी का एक मुफस्सिल सवाल था, कई एक सवाल थे, उसमें उन्होंने अपनी रूहानी वारदात लिखी थी और बहुत दिलचस्प रिएक्शन देखने में आया कि बहुत से लोगों को ये जुस्तजू हो गई कि उन साहिब सवाल से मिला जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। जबकि यहां इसी नशिस्त में बारहा ये जिक्र हुआ कि ये चीजें जिससे हम मुतासिर हो जाते हैं, अहले इल्म के लिए तो पहले कदम पर ही ये पेश आती हैं, और जो ही उनका कदम अगला कदम उठता है ये चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। बहुत लोग हैं जो इस जस्तजू में हैं कि वो साहिब सवाल कौन हैं, कि उनसे मिला जाए और उनसे मिलकर कुछ दुआएं करा ली जाएं, कुछ इल्म हासिल कर लिया जाए। तो एक ये सवाल किसी साहब ने इसी ज़िम्न में लिखा है कि गुज़श्ता नशिस्त में एक खत का जिक्र हुआ जिसमें किसी खातून ने अपने रूहानी मुशाहदात और वारदात को बयान किया था। इससे जहां उनके रूहानी की मनाजिल तय करने का अंदाजा हुआ, वहां अपनी कमाईगी का बेपना एहसास भी। अज़राहे करम रहनुमाई फरमाइए कि क्या रूहानियत के सफर में ये मुशाहदात और वारदात ही रूहानी तरक्की की कसौटी हैं। ये तो मैं उसी नशिस्त में, जो पिछली नशिस्त थी, उसी में अर्ज कर रहा था और बहुत जोर देकर आपसे अर्ज किया था मैंने। अगर किसी ने ये देखना हो कि किसी साहिब इल्म के पास बैठने से उसको कुछ फायदा हुआ या नहीं, तो इस पर न परखिए कि कोई साहिब कश हुआ, साहिब दुआ हुआ, साहिब करामात हुआ या नहीं, वो कोई मायार नहीं है। बल्कि जब इंसान उन राहों से गुजरकर आगे चला जाता है तो जब लौट के देखता है, पलट के देखता है, तो वो चीजें जो कभी उसे बहुत लुभाती थी वो उसे मदारी की शब्दाबाजी से ज्यादा दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मदारी की शब्दाबाजी है। अगर किसी ने ये देखना है कि उसे कुछ मिला या नहीं मिला, तो फिर यूं देखे कि जब मैं किसी साहिब इल्म के पास जाके बैठा, तो उस वक्त जिस किस्म के मसाइल मुझे परेशान कर जाते थे, क्या वो मसाइल अब मुझे परेशान करते हैं या मैं उन्हें हंस के टाल देता हूं? ये इल्म मिलने की निशानी है कि रब पर भरोसा बढ़ गया। दूसरी चीज ये है कि उस साहिब इल्म के पास जब मैं बैठना शुरू किया, तो दुनियावी माल और ज़र का जो नुकसान मुझे गम में मुब्तला कर देता था, क्या अब उस नुकसान पर मैं कहकहे लगाता हूं, सुनता हूं और छोड़ हो गया क्या है, उसको अहमियत नहीं मैं देता। ये निशानी है इल्म के मिलने की कि दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकाल दी गई है, कुली तौर पर ना सही, जुज्वी तौर पर ही सही। तीसरी बात यह है कि जब प्रॉब्लम्स पेश आती थी, तो जिस वक्त से उस साहिब इल्म के पास में बैठा, उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज क्या जब प्रॉब्लम्स पेश आती हैं तो उनके हल फौरी तौर पर जहन में नहीं आते। इसको इस तरह से मैयर कर लीजिए, वरना तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये रूहानियत की राह वो है जिसको मैयर करने का कोई यार्ड स्टिक कहीं है नहीं। हम बाय रोड सफर करते हैं, तो अगर हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब भी हो, माइलोमीटर भी उसका खराब हो, तो भी हमें स्पीड का अंदाजा हो जाएगा, 100% ना सही लेकिन उसके करीब करीब कहीं जाएंगे, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ लगे हुए दरख्त और पोल्स जिस रफ्तार से पीछे जाते हुए दिखाई देंगे उससे हमें अपनी रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। ट्रेन में बैठे तो यही सूरत हाल है, लेकिन हवाई जहाज जो कार से और ट्रेन से कम 10 गुना ज्यादा स्पीड पर सफर कर रहा है, उससे अगर हम विंडो से बाहर देखें तो हमें जहाज अपनी जगह खड़ा हुआ दिखाई देता है, एक ही जगह स्टेबल, हालांकि 10 गुना ज्यादा रफ्तार पर वो प्रवास कर रहा है। वजह यह है कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं जहाज में बैठ के जिससे हम जहाज के मूव होने का अंदाजा कर सकें, दोनों साइड है उसमें फिजा है, कोई रेफरेंस नहीं ले सकते हम। तो जब तक हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ना हो किसी चीज को, हम को रिलेट नहीं किसी और चीज के साथ कर सकते। रूहानियत में भी हवाई जहाज वाला मामला है कि हमारे पास कोई रेफरेंसेस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है जिससे हम अंदाजा कर लें कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो ले देखिए, यही कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे अर्ज की कि इससे इंसान को अंदाजा हो जाता है, लेकिन ये इतनी गैर महसूस तरीके से क्रीप इन करती हैं आदमी में कि वो चेंज महसूस नहीं होती। कोई तवज्जो दिलाए तो अंदाजा होगा उसका। ये चीजें हैं किसी शख्स को इल्म के मिलने की निशानी। बुनियादी चीजें सिर्फ दो हैं जो कोई साहिब इल्म जिसके पास आप जाके बैठे वो आप पर जो काम करेगा उसके जरिए सिर्फ वो दो चीजें पैदा करने की कोशिश करेगा आपके अंदर। एक तो दुनियावी माल और ज़र की मोहब्बत आपके दिल से निकाल देगा, दूसरा अल्लाह पर भरोसा पैदा करेगा आपके अंदर। ये दुआ का भी खूब मामला है। एक तो दुआ अल्लाह के हुजूर इसलिए इंसान मांगे कि वो ये समझे कि मेरा रब सबसे बड़ा है, वो मेरा पालने वाला है, मेरा आका है, मेरी तमाम जरूरियात और मेरी वेलफेयर उसके जिम्मे है। तो मेरी बंदगी और आजिजी का तकाजा यह है कि मैं उसके हजूर दुआ जरूर मांगूं। जब ये समझ के दुआ मांगेगा तो उसमें परेशानी का आंसर नहीं होगा, कहा है मेरा बेटा बीमार है अस्पताल में, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, उसका क्या होगा, ये परेशानी नहीं होगी। ये एतमाद होगा कि मेरा रब मौजूद है, मेरा आका मौजूद है, मेरी तमाम तर वेलफेयर उसकी जिम्मेदारी है, उसने अपने जिम्मे ले रखी है, मैं उससे अर्ज करूं मेरा मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह के हजूर वो इस एतमाद के साथ, इस मान के साथ दुआ करेगा और उस दुआ का जो नतीजा निकले कि बेटा सेहतियाब हो जाए या बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाए, दोनों ही सूरतों में वो रब ताला के उस फैसले को बड़ी खुशी से कबूल कर ले। एक तो ये तरीका है। दूसरा पहलू दुआ करने का यह है कि इंसान परेशानी का मारा अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाए कि या अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, या अल्लाह मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या अल्लाह तू इसे सेहत दे दे। इसमें परेशानी है और गर्ज है। इस दुआ में भरोसा रब पर नहीं है, बेटे पर है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो इसमें से वो मान निकल गया, अब हमने भीख मांगना शुरू कर दी। और इससे भी बुरा यह है कि हम इतने परेशान हो जाएं अपने मसाइल से कि हम लोगों के पास जाके कहें कि मेरे लिए दुआ कर दो। वो कतई तौर पर किसी भी अहले इल्म के लिए पसंदीदा बात नहीं है कि परेशानी का मारा गया बंदा ये शो करता है कि इंसान का अपने रब पर भरोसा नहीं है। मैंने पहले भी मिसाल दी थी, हम में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि कभी वो अपने मोहल्ले वालों के पास गया हो कि मेरी वालदा से कहिए कि मेरे लिए खाना तैयार रखें जब मैं आऊं, तो मेरी वालदा से जाके आप मेरी सिफारिश कर दें कि जब मैं लौट के घर आऊं तो मेरा बिस्तर मुझे तैयार मिले। एक सेकंड को वहम नहीं आता हमारे दिल में, बड़े एतमाद के साथ हम घर से चले जाते हैं, रात को टहलते हुए जाते हैं, यकीन है कि हमारी वालदा घर पर हैं, हमें गर्म खाना ताजा मिलेगा, हमारा बिस्तर भी हमें बिल्कुल अरेंज मिलेगा, और अगर सर्दी है तो वालदा उसमें लेट के वो बिस्तर गर्म किए हुए होंगी हमारे लिए। कभी किसी से सिफारिश नहीं कराते, वो एतमाद है, वो भरोसा है अपनी वालदा पर। यही भरोसा रब ताला पर पैदा करता है अहले इल्म इंसान के अंदर कि वो एक लम्हे को नहीं सोचता कि मेरा रब मुझे तन्हा छोड़ देगा, या मेरा रब मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरा रब मेरी बात नहीं मानेगा। ये उसी वक्त इंसान दूसरों के पास दुआएं कराने जाता है जब दिल में शक पैदा हो जाए रब के बारे में। आप कभी किसी अहले इल्म को दूसरे के पास जाके दुआ कराते नहीं देखेंगे, वो एक ही एतमाद से रब ताला से बात करता है कि या अल्लाह जब तू मौजूद है तो मैं क्यों सोचूं अपने मसाइल के बारे में, तू इन्हें हल कर, और ये मेरा ईमान है कि तू इन्हें मेरे बेहतरीन मफाद में हल करेगा। वो बराह रास्त अपने रब के साथ डायलॉग में रहता है हर वक्त। तो जब ये इंसान में कैफियत आ जाए तो समझ जाइए कि वो अहले इल्म हो रहा है। किसी गैर मुल्क से कोई सवाल आया है कि इन द होली कुरान इट इज मेंशन दैट अल्लाह सेंट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हिज गाइडेंस एंड द रिलीजन टू प्रिवेल ऑल ओवर रिलीजन्स। इफ यू थिंक फॉर इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज कुरानिक क्लेम्स देन प्रॉफिट मोहम्मद रिलीजन शुड हैव प्रिवेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हिच हैज नेवर हैपेंड। Then what is the meaning of these verses if it is not that this religion should prevail all over the world? एक साहब थे जिनके दुनियावी मसाइल बेपनाह थे और वो पीर साहिबान से दुआएं कराते कराते थक गए, खुद भी आमिल हजरात के पास जाते जाते थक गए। तो बिलाखिर उन्होंने वो राह पकड़ी जो मायूस लोग, जो पॉजिटिव थिंकिंग के मायूस लोग हैं वो पकड़ते हैं, कि उसने अपने रब से लौ लगा ली। चूंकि दुनिया से मायूस हुआ हुआ था और मार खाए हुए था, تو بڑی شدت کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت اس نے شروع کر دی. رب تعالیٰ نے اس کی اپنی رحمت کے صدقے عبادت قبول کی اور ایک فرشتہ آیا. یہ واقعہ نہیں ہے, یہ اصل میں ایک تمثیل ہے جس سے معاملات کچھ سمجھ میں آ جائیں گے. یہ واقعتاً پیش نہیں آئی یہ چیز. تو فرشتے نے آ کے ان صاحب سے کہا کیا آپ نے رب تعالیٰ کی عبادت بڑے خلوص دل سے کی ہے, بڑی شدت سے کی ہے, رب نے آپ کی عبادت قبول فرما لی اور مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ جو کچھ مانگتے ہیں میں اللہ کے حکم سے آپ کو دے دوں. تو ان صاحب نے فرشتے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ضرورت بتاتا ہوں تمہیں, لیکن کچھ نکتے ہیں جو میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہیں, پہلے وہ دو نکتے میرے ذہن میں کلیئر کر دو, پھر میں تم سے کہوں گا کہ میری ضرورت کیا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ ہاں بتاؤ, میں جواب دے دوں گا تمہیں. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ رب کتنا امیر ہے. تو فرشتہ اس پہ چکرا گیا کہ اس کا جواب کیا دے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کتنا امیر ہے, اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اس کے امیر ہونے کا. تو مراسی نے کہا صاحب نے کہ آپ ہماری دنیا کی ریفرنس سے مجھے سمجھا دیں کہ کتنا امیر ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اس کا تو کوئی یارڈ سٹک ہو ہی نہیں سکتی رب کے امیر ہونے کی, تو میں کیا بتاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا پھر میں تمہاری مشکل خود آسان کر دیتا ہوں, یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے ملک کے سیگلز کی طرح امیر ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس سے تو عرب ہے, عرب زیادہ. اور دو چار بڑے سرمایہ داروں کا نام لیا. اس نے کہا نہیں, عرب ہے, عرب گنا زیادہ. کہا اچھا یہ اس طرح بات نہ تم سمجھا سکتے ہو نہ میری سمجھ میں آئے گی, یہ بتا دو کہ رب تعالیٰ کا ایک روپیہ ہماری ملک کی کرنسی کے کتنے روپوں کے برابر ہے. تو فرشتہ کہنے لگا یہ بھی بے وقوفی کا سوال ہے, میں کیا جواب دوں گا. اس نے کہا اچھا میں تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں کہ اللہ کا روپیہ ہمارے 100 روپے کے برابر ہے. اس نے کہا نہیں, کہیں زیادہ, 1 کروڑ کے برابر, اس سے بھی کہیں زیادہ, 1 ارب کے برابر, نو اس سے زیادہ, 1 کھرب کے برابر ہے. فرشتہ تنگ آ چکا تھا ایسے سلی کوشچن سے. اس نے کہا بس یہی سمجھ لو کہ اللہ کا روپیہ 1 کھرب روپے کے برابر ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات تھی جو تم سمجھا نہیں پا رہے تھے مجھے. تو اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ٹائم سکیل کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا 1 منٹ ہمارے کتنے منٹ کے برابر ہے؟ اس نے کہا یہ بھی ویسے ہی بے وقوفانہ سوال ہے, اس کا کیا جواب ہوگا. اس نے کہا چلو یوں بتا دو کہ اللہ کا 1 منٹ ہمارے گھنٹے کے برابر ہے. اس نے کہا نہیں, زیادہ ہے, 6 مہینے بہت زیادہ ہے, 10 سال نہیں, اس سے بھی زیادہ. جب وہ 1000 سال پر پہنچا تو فرشتہ جو پہلے ویئر آؤٹ ہوا تھا مزید ویئر آؤٹ ہو گیا اور کہنے لگا اچھا یوں ہی سمجھ لو اللہ کا 1 منٹ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے, میرا سوال صرف یہ ہے کہ اللہ کا 1 روپیہ دے دو تم مجھے. تو فرشتے نے کہا کہ اچھا 1 منٹ. انہوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے جاؤ. بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے یہاں جو ٹائم سکیل ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی ٹائم کتنا بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن میں آیا ہے وہ سچ ہے. اسلام پوری دنیا کا مذہب بن کر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محدود دنیاوی زندگی اللہ نے عطا کی تھی, دنیاوی زندگی, اس کے بعد کی زندگی کی بات نہیں کر رہا. جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی یا ان سے لینا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطریق آسن پوری کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جو اللہ کا پیغام ہے اپنی دنیاوی زندگی میں جن جن لوگوں تک پہنچا سکتے وہ پہنچا دیتے, جو انہوں نے بڑی خوبی سے پہنچا دیا. اسی لیے یہ کہا گیا کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم حضرات वो काम करेंगे जो पहली उम्मतों के अंबिया ने किया कि अल्लाह ताला के मैसेज को उसके बंदों तक पहुंचाएंगे। तबलीग का सिलसिला यूं जारी हुआ कि हर उम्मती पर यह फर्ज है कि वो इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचाए, जिस रंग में भी पहुंचा सके। ये सिलसिला जारी है। एक वो वक्त था कि 12 साल मक्की जिंदगी जो नबूवत के बाद की है, उसमें टोटल मर्द हजरात 110 थे जो मुसलमान हो सके उन 12 सालों में। 10 साल मदनी जिंदगी का आलम यह था कि जब आप हजरतुल विदा के लिए तशरीफ ले गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 मुसलमान थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 1.2 बिलियन से ज्यादा हैं, पूरी दुनिया की आबादी के पांचवें हिस्से से ज्यादा हैं हम। ये मामला फैल रहा है, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब इस्लाम पूरी दुनिया में पूरी तरह फैल चुका होगा और जितनी भी उस वक्त की आबादी होगी वो सब की सब मुसलमान होगी। इसकी पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, उसके तमाम फैक्टर्स भी बयान हुए हुए हैं। इट्स मैटर ऑफ टाइम ओनली। तो जैसे मैंने कहा कि रब ताला के यहां तो कोई चीज रेवोल्यूशनरी नहीं है, सब की सब एवोल्यूशनरी है, तदरीज है अल्लाह के कामों में। कोई सी चीज देख लीजिए, पहाड़ हैं, कई सौ सदियों के बाद पहाड़ जन्म लेता है, तो बिल्डअप होने में कई सौ सदियां गुजर जाती हैं, टूटता भी उसी हिसाब से है। वो दरख्त फल देने तक कई साल लेता है। खुद इंसान की अपनी पैदाइश का अमल और उसके बाद उसकी जिंदगी तदरीज है, हर जगह दिन और रात तब्दील होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 बजे तक तो सूरज पूरी कुवत से चमक रहा हो और 7:01 पर अंधेरा हो जाए। मौसम बतदरीज बदलते हैं। ये सब अल्लाह के कामों में तदरीज है। अल्लाह बेसब्र नहीं है इंसान की तरह। उसका मजहब फैलेगा, जो उसने वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। और ये कुरानी आयात बिल्कुल सच्ची हैं और ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन दूसरे मजहब पर गालिब आके रहेगा। इनका अगला सवाल है कि इन होली कुरान देर इज मेंशन ऑफ जिन्स हु वर कैप्टिवेटेड बाय सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, कैप्टिवेटेड देम एंड यूज्ड फॉर हार्ड लेबर, इट मींस इट इज अलाउड एंड परमिटेड। माय क्वेश्चन इज How can we achieve it? बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हाकिम बनाए गए थे चरिंद परिंद जिन्नात और इंसानों पर। तो जिस तरह से हम अपने बादशाहों के लिए काम करते हैं, इसी तरह जिन्नात ने उनके लिए काम किया। उस वक्त गुलामी राज थी मुआशरे में और ये जिन उसी कैप्टिविटी में थे जिसमें गुलाम होते हैं, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम लेते रहे। आज के दौर में बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिनके पास जिन्नात हैं, बल्कि कुछ भाई इकट्ठे मेरे पास आया करते थे, उनकी दुकान है लोहारी में, उनके बराबर वाले दुकानदार के पास भी जिन्नात थे 3, और वो साहब उन जिन्नात का डरावा देके अपना सामान अपनी दोनों साइड पर जो पड़ोसी दुकानदार थे उनके आगे रख देते थे। तो इन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैं तो बहुत छोटा और धीमा आदमी हूं, तो मेरा तो एक ही जवाब होता है कि चलो कर लेने दें, कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने ज्यादा शोर मचाया तो मैंने उनसे पूछा कि वो करता क्या है, तो उन्होंने कहा जी वो उनकी दुकान है वहां हमारे बराबर, और यहीं अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं और 500 रुपए लेके लोगों के सवालों के जवाब पूछ कर उन्हें दे देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जाइए भी आप और जाके उनसे मिल लीजिए और कोई सा सवाल पूछ लें। इसमें मैं जो बाकी बात मैंने कही उसमें चूंकि मेरी अपनी जात सामने आ रही है इसलिए उसे मैं ओमिट कर रहा हूं। तो 500 रुपया लेके गए और जाके वहां बैठ गए। तो जिन उस दिन नहीं आए वो सवाल का जवाब नहीं दे सका। इन्होंने मुझे कहा कि जी वो तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो आपसे पहले कहा था कि जिन्नात नहीं आएंगे, चले जाओ तुम। उन्होंने कल फिर बुलाया, तो जाइए आप, जरूर जाइए। ये गए तो लाल पीले हो गए साहब इन पर और कहने लगे वो मेरे जिन्नात लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, वो नहीं आएंगे, ये पकड़ो अपने 500 रुपए और यहां ना आया करो तुम। तो 500 रुपए लेके वापस मेरे पास आ गए, ये जवाब मिला। मैंने कहा कल जब वो सामान आपका रखे आपकी दुकान के सामने, दुकान को रोके तो उसको ये कह दें कि अभी तो सिर्फ जिन्नात लंबी छुट्टी पर गए हैं, अगर तुम बाज ना आए तो आज शाम तक वो मर भी जाएंगे। वो उन्होंने बाद में जो फीडबैक दिया वो ये था कि उसने सामान रखा ही नहीं, बिल्कुल इन्हें कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई। अब ये वाकया सुन के अंदाजा कर लीजिए कि आप जिन्नात को कैद करके जब काम लेंगे तो सामने कैसे कैसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जिन्नात कान को हाथ लगाते हुए 100 मील दूर भागेंगे। तो ऐसा गुलाम किस काम का कि जिसको जो चाहे भगा दे। और वैसे भी मेरे नजदीक तो किसी को गुलामी में रखना वैसे ही गैर अखलाकी हरकत है और अल्लाह की राह पर चलते हुए इस किस्म की हरकतें कोई मुनासिब नहीं है। तो आप मेरे ख्याल में तो ये ना कीजिए, उस चीज को हासिल कीजिए जो पायदार हो। रब तआला से मुझे इस वाक़े से, इस मामले से एक और किस्सा याद आ गया। एक जमाने में मैं ऑफिशियल टूर पर इंडिया गया हुआ था, तो होटल में मैं ठहरा हुआ था। रात को जब मैं अपनी इबादत से फारिग होके बैठा था तो आधी रात के वक्त घंटी बजी, तो मेरे जहन में पहला सवाल यही आया कि चूंकि पाकिस्तानी जब यहां आते हैं तो उनके इंटेलिजेंस वाले चेक करते हैं, तो शायद इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है जो मुझे चेक कर रहा है। तो मैंने जवाब दिया तो एक साहब ने कहा, पूरा नाम मैं भूल गया हूं लेकिन उनका सरनेम था कालिया, तो मुझे कहने लगे कि आर यू इंटरेस्टेड टू नो योर फ्यूचर सर। तो मैंने कहा कि हु वुडंट बी। तो मैंने कहा कि इफ आई कम डाउन टू योर रूम आई विल चार्ज यू 500 इंडियन रुपीज एंड इफ यू कम टू माय ऑफिस आई विल चार्ज यू 250 रुपीज। तो मैंने सोचा कि ये यहां इन चीजों का बड़ा शोहरा है कि इंडियंस इन चीजों में बहुत आगे हैं, तो मैं इसे चेक तो करूं कि क्या कह रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि कल मैं आपके पास आपके ऑफिस हाजिर हो जाऊंगा, कनाट पैलेस में उसका दफ्तर था जिस होटल में मैं ठहरा था उसके पास ही। तो मैं उसके पास गया और पहले से एक साहब वहां बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम, तारीख पैदाइश, वालदा का नाम और जाए पैदाइश पूरी डिटेल ले ली और उसके बाद कहने लगे कि साहब मैं आपका जो पास्ट है वो बताने लगा हूं, अगर मैं गलत बताऊं तो पैसे नहीं लूंगा, तो जहां मैं गलत हूं आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है आप बताइए। तो पहली एक बात तो उन्होंने दुरुस्त बताई, उसके बाद जितना कुछ बताया वो सब गलत था। मैंने पॉइंट आउट नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन था और मैं पाकिस्तानी, मैं ये चाहता था कि वो ये ना समझे कि मैं पैसे देने की खातिर उसे बिला वजह कह रहा हूं। जब उसने खत्म कर लिया उसने कहा कि साहब पास तो आपका सारा बता दिया, अब मैं फ्यूचर बताता हूं आपको, तो वो पैसे दे दीजिए, ये ले लीजिए 250 रुपीज। तो जब उन्होंने ड्रॉर में रख लिए वो पैसे, तो मैंने उनसे कहा कि कालिया साहब अगर आप माइंड न करें तो मैं कर्ज करूं आपकी खिदमत में। जितना कुछ आपने बताया ये सब गलत था, सिर्फ पहली बात एक दुरुस्त आपने कही थी। तो वो खासा परेशान हो गए इस बात पर। जो एक साहब बैठे थे जिनका बाद में पता लगा कि वो सेठ थे और उनका दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का काम था, वो आए थे उनसे ये मशवरा करने कि मैं 100 मजीद बसें कारोबार में इंडक्ट कर दूं। तो वो भी बड़े चौंके। तो अब कालिया साहब क्योंकि पैसे तो ले चुके थे, मुझे कहने लगे कि चलिए मैं आपका फ्यूचर बताता हूं। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि आप मेरा फ्यूचर क्या बताएंगे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में हासिल की और उसके बावजूद आपने माजी मेरा पूरा गलत बताया। मुझे तो आपका पूरा नाम भी याद नहीं, मिस्टर कालिया याद है। तो मैं अर्ज कर देता हूं आपसे आपके बारे में और फिर मुझे बताइएगा वो गलत है या सही। तो मैंने उनसे बताया कि आप जिस घर में रहते हैं वो इस तरह का है, अंदर से उसका ये नक्शा है। दैट वॉज शॉक टू हिम। और उन्होंने कहा आपकी बेगम साहब बीमार हैं। एक जगह मैं जाके धोखा खा गया, तो उनसे मैंने कहा कि आपकी ये बेटी जो है इसी तरह की शक्ल की, ये बड़ी खिदमत गुजार है माँ की और बहुत खिदमत करती है। तो कहने लगे वो बेटी नहीं, मेरी नौकरानी है। ऐसे डुके मैं धोखा यहाँ खा गया हूं। तो उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट सर्विस में थे कि जी। मैंने कहा आप पर केस चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट ने आपसे ये कहा है कि ये पेपर प्रोड्यूस कीजिए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं वो पेपर आप प्रोड्यूस कर दीजिए, आपके हक में फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि ज्वाइन करके ड्यूटी और अपने एरियर्स वसूल करके रिजाइन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ गई साल भर की तनख्वाह के बराबर एक दिन में यहां से कमाते हैं आप, तो आप नौकरी नहीं कर सकेंगे अब। तो मुझे कहता वो मिस्टर शाह से फिर महाराज हो गया मैं कि महाराज आपके पास क्या इल्म है। तो मैंने उनसे कहा कि कालिया साहब ये कोई अनहोनी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं, आप उस रब को रब मान लीजिए और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लीजिए जिसको मैं मानता हूं, तो आपको भी ये इल्म हासिल हो जाएगा और ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। बात यह है कि इंसान वो इल्म हासिल करे, उन चीजों पर रिलाय करे जो मुस्तकिल हों और जो रब की तरफ से अदा करदा हूं। जिन्नात को कैद करना और अमलियात से इसी तरह की मौकल काबू कर लेना, उनसे काम लेना, ये बिलाखिर नुकसान देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अमलियात के जो लोग हैं उनकी शक्लें डिफॉर्म हो जाती हैं, फेस डिफॉर्म हुए होते हैं, साफ पता लगता है कि बंदा किसी रूहानी या किसी रहमानी राह का मुसाफिर नहीं है। हम अल्लाह की राह क्यों ना पकड़ें कि वहां से अता होने वाली हर चीज पायदार भी है और उसकी बरकत भी है। इन्हीं साहब का एक और सवाल है कि आई एम लिसनिंग योर लेक्चर्स रेगुलरली, आई नीड टू नो द बेनिफिट्स ऑफ जिक्र कल्बी सिंस आई एम इन नक्शबंदी। इनफैक्ट कहना ये चाह रहे हैं कि उनका ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया से है, एंड आई एम डूइंग जिक्र कल्बी, हाउ टू इम्प्रूव इन दिस पाथ सिंस आई हैव मेड माई रिक्वेस्ट फॉर जिक्र रिलेटेड टू माई नेम। मुझे तो बता देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रूहानियत की राह का एक कानून है, जैसे जो भी हम काम करते हैं हत्ता कि जो खेल खेलते हैं उसके भी रूल्स ऑफ द गेम्स होते हैं। अगर उन रूल्स को हम फॉलो न करें, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट के रूल्स ऑफ द गेम वहां अप्लाई कर दें, तो सिवाय टांग टूटने के कुछ नहीं मिलेगा हमें। इसी तरह रूहानियत में भी, तसव्वुफ में भी इसके रूल्स ऑफ द गेम हैं। जब इंसान किसी आदमी के हाथ पर बैत कर ले, उसे अपना मुर्शिद मान ले, तो उस पर यह फर्ज हो जाता है कि वो दुआ के लिए या गाइडेंस के लिए किसी और के पास न जाए सिवाय अपने मुर्शिद के। दूसरे अहले इल्म के पास जरूर जाए इंसान, लेकिन सिर्फ सलाम करने, उनकी खिदमत कराइए, उसमें हर्ज नहीं है, तो सलाम कर दीजिए, लेकिन न तो उनसे दुआ कराइए न उनसे गाइडेंस मांगिए, क्योंकि फिर अगर ये हाल हुआ तो इंसान सारी उम्र कहीं नहीं पहुंच पाता। कभी मुझे भी इसका इल्म नहीं था, तो मुझे आज से कोई 35 साल पहले लोगों ने गाइड किया, तो समझ आ गई कि मुझे स्वाय अपने मुर्शिद के और किसी के पास नहीं जाना है। इन 35-36 सालों में मैंने बहुत से लोगों को देखा जो जगह जगह जाते हैं दुआ कराने, उनसे गाइडेंस लेते हैं, सारी उम्र वो कोहलू के बैल की तरह एक सर्कल में चलते रहते हैं, कहीं पहुंच नहीं पाते। लाइकवाइज मैंने उन लोगों को हमेशा जहनी तौर पर परेशान देखा है जो जहां से कहीं अखबार में, किताब में, रसाले में वजीफा या दुआ दिखाई दी, उन्होंने वो वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया, वो अमल करना शुरू कर दिया, सिवाय जहनी परेशानियों के ऐसे लोगों के हाथ कुछ नहीं आता। तो मैं इन साहिब सवाल से भी अर्ज करूंगा कि आप चूंकि सिलसिला नक्शबंदिया में बैठे हैं, आप अपने मुर्शिद साहब ही की खिदमत में हाजिर हुई, उन्हीं से आप गाइडेंस लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या जिक्र करना है, क्या नहीं करना है। ये मत समझिए कि अगर आपके मुर्शिद दुनिया से चले गए हैं तो आपका राबता उनसे मुनकता हो गया, ऐसा नहीं है, ये राबता कायम रहता है। वो आपके मुर्शिद आज भी हैं अगर दुनिया में नहीं रहे, ये उस वक्त तक आपके मुर्शिद होंगे जब तक के यौम हिसाब हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। तो आप पाबंद हैं उस बैत के जरिए से अपने मुर्शिद साहब के, सिर्फ उन्हीं के पास गाइडेंस के लिए जाइए। ये किसी साहब ने सवाल इत्तफाक वही पूछा जिसका भी मैं जवाब दे रहा था कि किसी शख्स के मुर्शिद इंतकाल फरमा चुके हों तो क्या, नंबर एक, मुर्शिद की फौतगी के बाद सिलसिला बैत मौकूफ हो जाता है और मुरीद किसी दीगर रूहानी हस्ती के बैत के हाथ पर बैत कर सकता है। मैंने अभी जवाब दिया इसका कि मुर्शिद से ताल्लुक नहीं खत्म होता, बैत फस्क नहीं होती, इंतकाल के बाद भी कायम रहती है। दूसरा सवाल इनका है कि क्या मुर्शिद की रहलत के बाद सजादा नशीन से तजदीद बैत लाजिम है, ये जारी रहती है। जाती तौर पर मैं इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में पढ़ने का कायल ही नहीं, एक गाइडेंस ले रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई शख्स स्कूल में दाखिल होता है और एक उनके उस हेडमास्टर जिनके जमाने में उसने एडमिशन लिया वो ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे हेडमास्टर आते हैं तो दोबारा से उनका दाखिला होगा, ऐसा नहीं है, ये सिलसिला जारी रहता है। तो तीसरा सवाल इनका यह है कि अगर मुरीद जाए मुर्शिद से बहुत दूरी पर रिहाइश पजीर हो तो मुर्शिद किसी दीगर रूहानी शख्सियत से दुआ की इल्तमास कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप अगर अपने मुर्शिद साहब से दूर हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप दुनियावी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर लीजिए अपने मुर्शिद के साथ, या फिर आसान तरीका एक और है कि ईशा की नमाज के बाद आप दो नफल नमाज पढ़ें और तवज्जो बांधिए अपने मुर्शिद की तरफ और तवज्जो बांध के बैठिए, इंशाअल्लाह ताला आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इनके दो सवाल तो जरा तफसील तलब हैं, वो मैं तफसील से बता दूंगा, लेकिन एक सवाल मैं अर्ज कर दूं, ये मालूम नहीं मेरे किस गुफ्तगू के नतीजे में ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि मैं ये कहता हूं कि अगर किसी दूसरे इंसान या फकीर के जरिए अगर दुआ कराई जाए तो शिर्क के जिम्मे में आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे इंसान से दुआ कराना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है, लेकिन जिस तरह से मैं इसे शिर्क कहता हूं वो ये है कि हम अक्सर बेशतर किसी साहिब दुआ के पास जाके ये कहते हैं कि ये मेरा मसला ये हल कर दें आप, وہ حل نہیں کر سکتا، وہ تو خود محتاج ہے اللہ کا. ہم مزار پہ جاتے ہیں، صاحب مزار سے کہتے ہیں کہ تم میرا یہ مسئلہ حل کر دو، تم یہ حاجت پوری کر دو. یہ شرک ہے. غیر اللہ سے حاجت روائی کی درخواست شرک ہے. لیکن کسی سے یہ کہنا کہ تم اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دو، یہ سنت ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. وہ کچھ تھوڑا یا تو میرے بیان کرنے میں کہیں کوئی کنفیوژن ہوگا یا آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی، تو یہ دونوں میں فرق ہے. تو میں اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہا ہوں کہ کسی دوسرے شخص سے دعا کا کہنا سنت ہے، جائز ہے، ضرور کیجئے. لیکن کسی دوسرے شخص سے حاجت روائی کی توقع رکھنا شرک ہے. کسی صاحب مزار سے یہ نہ کہیے کہ مجھ پر رزق کی تنگی ہے تو رزق کھول دے، وہ شرک ہے. ان دونوں چیزوں کو کلیئرلی دیکھ لیجئے. باقی دو سوال ذرا سے تفصیل میں جواب مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اس کے جواب میں عرض کر دوں گا. السلام علیکم.